ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जला दीजिए।
और माइक को ठीक कीजिए। हरे कृष्ण। जला देना चाहिए। श्री भगवान उवाच। स्वागतं वो महाभागः। आश्यतां करवाम किम्। जन्नो दिदृक्षया प्राप्ता। उपपन्नमिदं हि नः वः। नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति। कुशलः स्वार्थदर्शिनः। अहैतुक्य व्यवहिता। भक्तिमात्म प्रिये यथा। प्राण बुद्धि मनः स्वात्मा। दारापत्यधनादयः। यत् सम्पर्कात् प्रियायासान्। ततः को न परः प्रियः। तद्यातदेव यजनं। पतयो वो द्विजातयः। स्वसत्रं पारयिष्यन्ति। जुष्माभिः गृहमेधिनः। शान्ति शान्ति। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, स्वागतं, स्वागत है वह आप लोगों का। महाभागः, हे महाभाग्यवती। आश्यतां, मेरे पास आओ, निकट में बैठो। करवाम, करूं। किम, क्या।
छोड़ दीजिए,
आप बैठिए।
पहले से उपाय करना चाहिए ना, कोई नीम का लिक्विड छिड़कना।
किम, क्या। जात, जो। नहा, हमको। दिदृक्षया, देखने की लालसा से। प्राप्ता, आई है। यह। उपपन्नम, बिल्कुल उचित है, युक्त है। इदम, यह। आपका आगमन। हे, निश्चित। वह, युष्माकम, आप लोगों का। भगवान श्री कृष्ण अब विप्र पत्नियों से कहते हैं, हे महाभाग्यवती द्विज पत्नियों, आपका स्वागत है मेरे पास आपका आना बिल्कुल युक्त है, ठीक है। बैठिए, मैं आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूं। मुझे देखने के लिए आप आई हैं, यह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद भगवान प्रमाण देते हैं कि जो भी विद्वान है इस जगत में, जो भी हुए हैं हैं, वे मुझसे प्रेम करते हैं। ननु निश्चित कुशलाः और स्वार्थ दर्शिनः आत्मप्रिय मयि अद्धा साक्षात् यथावत् अहेतुकीम् अव्यवहिताम् भक्तिम् कुर्वन्ति। क्या समस्या हो गई है माता जी को? आए? नहीं, वो माता जी खड़ी हैं, उनको कोई समस्या है? बैठने को जगह चाहती हैं, जाना चाहती हैं? ठीक। हाँ, वो माता जी को समस्या है। ठीक, बैठने दीजिए, बैठने। इमली के एक पत्ता पर तीन आदमी बैठ सकते हैं। कुछ लोग केवल हिलते हैं, चलते रहे। अब धूप कमजोर होता जाएगा, कोई बात। तो श्री भगवान कहते हैं कि आप लोग यहां मेरे पास आई, यह बिल्कुल ठीक है। तो उसी युक्तत्व का या औचित्य का प्रतिपादन करते हैं दूसरे श्लोक में, नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिनः अहैतुक्य व्यवहिताम् भक्तिमात्मप्रिये यथा। आप मेरे पास आई, मुझे देख करके आपको प्रसन्नता होती है, यह बिल्कुल ठीक है। इस संसार में जो भी कुशल लोग हैं और स्वार्थदर्शी, वे मुझसे ही प्रेम करते हैं। इस प्रकार भगवान सदाचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं संसार में या हैं, वे सब मुझसे प्रेम करते हैं। कुशलाह का अर्थ आत्महिता हित विवेकिनः, हमारा किस विषय में हित है और किस में हित नहीं है, इसको जो जानते हैं ठीक से, उनको कुशल कहते हैं, कुशला। और स्वार्थदर्शिनः, चूंकि विवेकवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अतः स्वस्य अर्थम पश्यन्ति ये ते स्वप्रयोजना भिज्ञा जना स्वार्थदर्शिनः। जीवन में वास्तविक लाभ क्या है, अर्थ क्या है, इसको जो देखते हैं, जिसको जानते हैं, उनको स्वार्थदर्शी कहते हैं। तो स्वार्थ है श्री कृष्ण प्रेम, इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। इसके विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सही तो परम फल परम पुरुषार्थ, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। जीवन में सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा स्वार्थ है, प्रयोजन है भगवान कृष्ण से प्रेम करना। तो जो स्वार्थदर्शी हैं, अपने परम लक्ष्य को जानते हैं और जो कुशल हैं, वे आत्मप्रिय अपने परम प्रिय या अपने शरीर से भी बढ़कर के प्रिय मुझमें मई अद्ध साक्षात भक्तिम कुर्वन्ती, मुझमें भक्ति करते हैं। यहाँ अद्धा का अर्थ है साक्षात, और साक्षात का अर्थ है विशुद्धाम, विशुद्ध भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं। भक्ति की विशेषता बता रहे हैं अहैतुकीम और अव्यवहिताम, फलानुसंधान रहिताम, अहैतुकी। मुझसे प्रेम करते हैं तो किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं, स्वर्ग पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए या अष्ट सिद्धि ऐश्वर्य आदि पाने के लिए मेरी भक्ति नहीं करते हैं। बस भक्ति करने में ही उनको आनंद है, निष्काम भक्ति करते हैं, और इसलिए अव्यवहिता भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति कभी खंडित नहीं होती है, निरंतर भक्ति करते हैं, सब समय सब काल में मुझसे प्रेम करते हैं। तो आप लोगों ने जो मेरे साथ प्रेम किया है, भगवान के कहने का आशय है, यह बिल्कुल ठीक किया है। संसार में कोई नहीं कह सकता है कि आप लोगों ने गलत रास्ता पकड़ा, सब प्रशंसा करेंगे आपकी, भगवान उनके प्रेम का अनुमोदन कर रहे हैं। यह बात केवल विप्र पत्नियों के लिए ही नहीं है, वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण से प्रेम करता है, उसको भगवान इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं। अन्य बड़े बड़े महाजन वैष्णव जन तो प्रशंसा करते ही हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी या नारद मुनि इत्यादि, ये लोग तो प्रशंसा करते ही हैं, स्वयं भगवान प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसकी वे प्रशंसा करते हैं और अपने समाज में उसकी बड़ाई करते हैं, यह भाग्यशाली व्यक्ति है, यह वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है। बहुनाम जन्म न मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर कोई व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है सत्य सत्य का, मेरा अनुभव प्राप्त करता है, तो उसको ज्ञानी कहते हैं। और वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही जानता है वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, परम फल है, परम प्रिय है, परम सुख स्वरूप है, इसको जानता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जितने भी कुशल अर्थात विवेकी और परमार्थ के ज्ञाता हैं, वे सभी मुझमें भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान यहाँ पर प्रीति प्रेम शब्द न देकर भक्ति दे रहे हैं। इसे भी समझना चाहिए कि वे श्री बलराम जी से संकोच कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई सामान्य भक्ति नहीं थी, वहां सर्वात्म समर्पण करके भगवान से प्रेम किया जा रहा था, जैसे गोपियों ने किया, लगभग उसी कक्षा का ये प्रेम है। फिर भी भगवान ने भक्ति की बात कर रहे हैं, अथवा इसका भाव यह है कि विवेकी जन अपना हित हित देखने वाले और परमार्थ को जानने वाले, परम अर्थ को जानने वाले मुझमें भक्ति करते हैं, तो फिर आपका तो कहना ही नहीं, आप तो प्रेम कर रही हैं, इस तरह से मुझे प्रियतम मान करके अपना सब कुछ समर्पण कर रही हैं, तो यह बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। आप लोगों ने जो अपने घर का और पति आदि का त्याग करके मुझसे प्रेम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपका यह कार्य समस्त विद्वानों के द्वारा सम्मत है और मेरे द्वारा तो सम्मत है ही, आप बिल्कुल ठीक की हैं। फिर भगवान अपने बारे में प्रवचन कर रहे हैं, मुझसे मेरे संपर्क के कारण ही किसी को प्राण बुद्धि मन और स्वजन शरीर स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय लगते हैं। आत्मनः सर्वतः प्रेष्ठत्वम उपपादयति। श्री भगवान ये बता रहे हैं कि मैं ही सबसे प्रिय व्यक्ति हूं, प्रिय वस्तु हूं जगत में सबके लिए, तो अपनी प्रेष्ठता का उपादन कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। प्राण बुद्धि मन, प्राण समझते ही हैं, प्राण का अर्थ जीवन है, अपना जीवन प्राण और बुद्धि मन और स्व, स्व का अर्थ होता है अपने बंधु बांधव आदि इस संसार में, जैसे माँ के लिए पुत्र सबसे प्रिय है और पत्नी के लिए पति प्रिय है या पति के लिए पत्नी प्रिय है, तो स्व कहते हैं। यहां स्व का अर्थ है स्वजन, प्राण बुद्धि मन स्वजन और आत्मा शरीर दारा स्त्री अपत्य पुत्र और धन आदय, जितने भी हैं मनुष्य को इस संसार में जो भी वस्तु प्रिय लगते हैं, सबसे प्रिय है प्राण शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने स्वजन आदि और धन घर, ये सब प्रिय है। परंतु ये जो प्रिय लगते हैं, क्यों प्रिय लगते हैं? जत संपर्कात, मेरे संपर्क से मैं उसमें हूं तब प्रिय लगते हैं। जत संपर्कात प्रिय आसन ततः कौन अपरह प्रिय, तो ऐसे परमात्मा से मुझसे बढ़कर के कौन प्रिय हो सकता है? किसके पास व्यक्ति जाए, किससे प्रीति करे? तो अपनी परमात्मता को व्यक्त कर रहे हैं यहां। परम प्रियत्वम साधितुम प्रथमम आत्मना एव प्रियत्वम आह प्राणायति। जत संपर्कात जस्य मम परमात्मन संपर्कात संबंधात समर्पणादि संबंधेन एव। तो जिन वस्तुओं का नाम भगवान ले रहे हैं उन पर विचार कीजिए। सबसे पहला प्रिय वस्तु है व्यक्ति के लिए प्राण। प्राण की रक्षा चाहता है, सबसे पहले प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और अत्यधिक प्रीति का जहां वर्णन किया जाता है तो कहा जाता है प्राण प्रिय है, मतलब प्राण के समान प्रिय है। प्राण क्यों प्रिय है? ये सांस लेना प्रिय है ना। अगर किसी की कोई नाक दबावे, गला दबावे तो वो कहेगा अरे छोड़ ले छोड़ ले मर जाऊंगा, बोले छोड़ो। सांस लेना इतना प्रिय है। तो यह सांस, यह प्राण क्यों प्रिय है? जब तक शरीर जी रहा है। और शरीर जी क्यों रहा है, किसके कारण जी रहा है? भगवान का अंश जीवात्मा और श्री भगवान परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर में है, ऐसे शास्त्र कहता है कि शरीर वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक इस फल को सुख दुख को खाता है, एक केवल साक्षी मात्र देखता रहता है। जीव जहां जाता है, जिस शरीर में जाता है, जिस देश में जाता है, वहां भगवान स्नेह बस जीव के साथ जाते हैं। सभी शरीरों में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान कहते हैं कि मैं सबके शरीर में हूं। मनुष्य शरीर में भी वे हैं, और जब जीवात्मा मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है तो भगवान स्नेह बस उसको स्मृति, ज्ञान, विस्मृति, निद्रा आदि देने के लिए उसके पास जाते हैं, उसी के साथ रहते हैं। यदि भगवान न रहे उसके साथ तो वह बिल्कुल भी चेतन हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, इंद्रियां आदि काम नहीं करेंगे। तो तभी तक यह शरीर प्रिय है, यह प्राण प्रिय है, जब तक परमात्मा इस शरीर में है। जत संपर्कात प्रियास, भगवान कहते जिसके संपर्क से ये सब जड़ वस्तुएं भी प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से मुझसे बढ़कर के प्रिय कौन है? मेरे संपर्क के कारण ये सब प्रिय लग रहे हैं, अन्यथा शरीर प्रिय नहीं लगता है। यह प्राण को शरीर से अभिन्न करके भी देखा जा सकता है। कभी कभी प्राण का मतलब होता है इंद्रियां, भागवत में कई बार इसका प्रयोग किया गया। शरीर में जब तक भगवान रहते हैं तब तक उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जीवित है, जीवित है, जी रहा है, और उस शरीर प्रिय लगता है। जिस समय भगवान उस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वह शरीर मृतक कहलाता है, और उस शरीर को व्यक्ति आग के हवाले करने में या जमीन के अंदर डालने में हिचक नहीं करता है ना, हिचक नहीं करता है। कभी कभी किसी विशेष साधु के लिए कहा जाता है कि उनको समाधि में बैठाया जा रहा है, वो समाधि में बैठाते हैं लेकिन चारों ओर से नमक और माटी से भर देते हैं। अब वो शरीर प्रिय नहीं है, आत्मा के न रहने पर, भगवान के अंश आत्मा के न रहने पर और भगवान के न रहने पर शरीर प्रिय नहीं लगता है। तभी तक प्रिय था जब तक भगवान का, परमात्मा का संग था। तो जिसके संग से अनित्य और जड़ वस्तु में भी प्रियत्व का भाव होता है तो उस वस्तु से, भगवान से बढ़कर के प्रिय कौन हो सकता है? कोई नहीं, अर्थात मैं ही प्रिय हूं। और दारा, अपत्य और धन आदि, पत्नी बहुत प्यारी होती है, प्रिया होती है, लेकिन यदि भगवान उसके शरीर से चले जाए और शरीर मृतक हो जाए तो मरी हुई पत्नी से कौन प्रेम करता है? कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। जब तक भगवान का अंश उस देह में है तब तक तो प्रिय है। और यही अपत्य, पुत्र आदि या धन आदि, ये तभी तक प्रिय हैं जब तक भगवान का संपर्क है। और एक और भी इसका अर्थ है कि ये सब प्रिय लगते हैं कब? जब भगवान से संपर्क होता है। इसका अर्थ है जब इन वस्तुओं से भगवान की सेवा की जाती है, भगवान से कनेक्शन होता है, तब सब कुछ प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। भगवत के दसम स्कंद के 20वें अध्याय में एक बात कही गई है कि नए पानी का सेवन करके, नए वर्षा में नए पानी का सेवन करके मछलियां या जलचर बड़े सुंदर लगने लगते हैं। यथा हरि निसेवाया, जैसे भगवान के संपर्क में आने पर कोई भी व्यक्ति सुंदर लगने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि विदेश में, अमेरिका में भक्त बनने से पहले कुछ लोग बहुत कुरूप लगते थे, हिप्पी, इधर उधर बाल बिखेरे हुए, दाढ़ी रखे हुए, चाहे जैसे तैसे, बहुत बुरा लगते थे। लेकिन जब वो कृष्ण भावना में आए, स्कान ज्वाइन किए, जब प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और सेविंग किए, केश कटा लिए और तिलक करने लगे, कंठी पहन लिए और भगवान का नाम जप करने लगे, तो अखबारों में, न्यूज़पेपर में छपने लगा कि बड़े बड़े ही ब्राइट फेस लगता है इनका, ये बड़े सुंदर लगते हैं, ये जो ये पेंट करते हैं ललाट पर, लोग पेंट निकालते थे, न्यूज़पेपर में कहते थे, कुछ लोग ललाट पर, फोरहेड पर पेंट करके और गले में काठ बांध करके, उडे उड कहते थे, उडे लकड़ी बांध कर तो मतलब ये तुलसी जी भी तो बाहर काठ रूप में ही है, ये काठ बांध करके गले में और कुछ जपते हैं और नाचते हैं, ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके पहले इन हिप्पियों को कोई नहीं पूछता था, जहां तहां जैसे तैसे गिरे रहते थे, कोई कोई गांजा भी पीते थे, नहीं गांजा तो बनारस में आकर पीते हैं इधर विदेशी लोग जो आते हैं, जो इस्कान के संपर्क में नहीं है, वो प्रायः गांजा वंजा पीते रहते हैं साधुओं के संग में, देखा गया। तो भगवान से संपर्क होने पर व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। वैसे भी आप विचार करेंगे तो जो लोग तिलक करते हैं वो लोग अच्छे लगते हैं, तिलक से शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका संबंध श्री कृष्ण से है। जो जब जीव भगवान का हो जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, और नहीं तो मरा हुआ आदमी है यदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जप नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, भगवान का प्रसाद नहीं खाता है, तो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान से तई प्राणी। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मैं वस्तु हूं, मेरे संपर्क में आने से शरीर अच्छा लगने लगता है, प्रिय लगता है, और मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, धन आदि मेरे संपर्क के कारण से प्रिय लगते हैं। मैं परमात्मा रूप से सब में हूं, इसलिए शरीर जीवित रहता है और अच्छा लगता है। नहीं तो प्यारा या प्यारी या प्रिय, क्या मुर्दा के लिए कोई लगाएगा शब्द, कभी कहेगा? और जब तक भगवान है शरीर में, तब तक कुछ भी कहिए, बोलिए, सुनिए, तब तो सब कुछ चलता है। तो जिनके संपर्क के कारण, सन्निधि के कारण किसी में भी प्रियता आ जाती है, ऐसे मुझसे बढ़ करके प्रेम का पात्र कौन है? तो आप लोगों ने जो मुझसे प्रेम किया है, बहुत अच्छा किया है। भगवान बोल रहे हैं, जहां श्री बलराम जी हैं, गोप हैं, तो अपने भाव को छिपाते हुए बोल रहे हैं, सामान्य रूप से अपना परमात्मत्व व्यक्त कर रहे हैं, मैं परम आत्मा हूं, सबके शरीर में हूं, अतः मुझसे प्रेम करना बिल्कुल उचित है, यह ठीक है। इतना कह करके भगवान कहते हैं, तद यात देव यजनम पतयो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारयिष्यन्ति जुष्माभि गृहमेधिनः। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब भगवान यह कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो ठीक किया है तो उनके संपूर्ण प्रीति भाव को, उनके मनोभाव का स्वागत किया है। तो उनके मनोभाव का स्वागत तो यह था, वे चाहते थे कि कृष्ण हमें पति रूप में मिलें, हम कृष्ण की दासी बनकर के सेवा करें। तो भगवान ने कहा आपका जो कुछ भी सोचना और करना बिल्कुल ठीक है, तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा भगवान क्या कहेंगे, स्वीकार किए ना, स्वागत कर रहे हैं कि आपका आना यहां बिल्कुल ठीक है। जब आना ठीक है तो मानसिक मनोरथ कितना ठीक होगा, ये सहज समझा जा सकता है। तो भगवान इस तरह से स्वीकार किए। ये है बुद्धिमानों के बोलने की कला, समाज में बोलना है और इस तरह से बोले कि सब बात फिट हो गई। तो कहते हैं भोजपुरी में कहावत की, आधा बुझे मरद और सौंस बुझे बरद। आधा कहने पर ही जो समझ जाए पूरा, आधा कहने पर पूरा समझे वो है मर्द, और सौंस पूरा पूरा कहने पर समझे वो बैल है। पूरा कहने पर तो एक बैल भी समझ जाएगा, शुरू से अंत तक सारी बात कही जाए तो सौंस बुझे बरद। सौंस का अर्थ होता है भोजपुरी में, सौंस माने संपूर्ण है, पूरा है। पूरा कहा जाए जब समझे तो बैल भी समझ सकता है। आधा कहने पर ही जो समझ जाए पूरा पूरा वो है मर्द, वह पुरुष। क्या ये समझ नहीं लिया गया कि भगवान उनके प्रेम को पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं? भगवान के मुख से बराबर प्रशंसा निकल रही, तुम ठीक किए हो, तुम ही नहीं संसार के मूर्धन्य मनीषी जन, विद्वान जन जो स्वार्थ को जानते हैं, जो हित अहित का विवेक रखते हैं, वे सब मुझसे प्रेम करते हैं। इतनी ऊंची बात बोलना, कहना सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो तुम लोगों ने भी मुझसे प्रेम किया है, बिल्कुल ठीक किया है, यही जीवन का परम लाभ है, यही सब कुछ ठीक है। मुझसे प्रेम, मुझसे बढ़कर प्रेम का पात्र कोई नहीं। तद तस्मात, यह तद शब्द है, तद का अर्थ तस्मात, इसलिए चूंकि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। और ऐसा तुम लोगों ने सुना होगा गर्गाचार्य आदि के मुख से, सोचा परमात्मा अहम एव जुष्माभिर गर्गादि मुखात श्रुत एव जुष्मद अंगानी आश्ली सदा वर्ते एव। तो मन में भगवान कहे हे प्रियाओं, मैं तो तुम्हारे शरीर के भीतर क्या, तुम्हारे मन के भीतर, आत्मा के भीतर भी मैं हूं। तुमने सुना ही होगा कि मैं परमात्मा हूं, जब परमात्मा है तो सबके शरीर में है ही, तो तुम्हारे अंगों का स्पर्श करते हुए तुम्हारे शरीर में मैं रह ही रहा हूं। तो हमारे साथ तुम्हारा वियोग हो नहीं सकता है, दूर रहने पर भी कहीं भी मैं सबके शरीर में हूं। जुष्मद अंगानी आश्लिष्य सदा वर्त एव तस्मात् देव यजनम यज्ञवाटम जात, इसीलिए तुम लोग यज्ञ भूमि में जाओ, यज्ञस्थल पर जाओ। ये बात सुनकर के मान लीजिए यज्ञ पत्नियां कहें, ननु तदापि साक्षात मूर्तम परमात्मानं त्वाम हित्वा कथम गृहम जामः। जब आपके संपर्क मात्र से कोई चीज प्रिय लगता है, कोई चीज प्रिय लगती है, तो वही साक्षात मूर्तिमान परमात्मा को छोड़कर हम अपने घर क्यों जाएं? आप एक बार तो हमारे प्रेम का स्वागत कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि घर जाओ, और वो भी मूर्तिमान परमात्मा को जो सच्चा प्रेमी है, पति है, आप ही सब कुछ हैं, तो आपको छोड़ करके हम घर क्यों जाएं? तब भगवान कहते पत्य इति, हे द्विज पत्नियों, तुम्हारे पति लोग स्वशत्रम पारयिष्यन्ति जुष्मा भी, तुम्हारे संग से ही, तुम्हारी सहायता से ही वे यज्ञ को पूरा कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि वे जो यज्ञ प्रारंभ किए हैं वो यज्ञ पूरा हो या उनकी गृहस्थी सार्थक हो, तो तुम जाओ। भगवान ये नहीं कह रहे कि ठीक है जाओ उनसे प्रेम करो, वो जो काम कर रहे हैं वह काम पूरा होगा तुम लोगों के साथ, स्त्री का साथ होना आवश्यक है यज्ञ में, तो इसलिए तुम लोग जाओ, मैं ही यज्ञ करने का उपदेश दिया हूं, विभिन्न देवताओं के रूप में मैं ही पूज्य होता हूं, अतः वह यज्ञ भी मेरा ही कार्य है, अतः मेरे अनुरोध से, मेरे कहने से तुम लोग वहां जाओ और वहीं पर मैं तुम्हारे हृदय में ही नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने भी स्फुरित होऊंगा, तुम मेरा दर्शन करोगी और तुम लोग जाओ। तस्मात् देव यजनम यज्ञवाटम जात गच्छत गृहमेधिन, तुम्हारे पति गर्हस्थ भाव को अपनाए हैं तो उनका यज्ञ तुम लोगों के बिना पूरा नहीं होगा। अतएव तद अपेक्षा देव यजनम जात इति उक्तम न च गृहानेति, वह पतय जुष्माकम पतय, तुम्हारे पतिगण जुष्मा भी सहैव स्वशत्रम पारयिष्यन्ति, स्वशब्देन कथंचित परकीयम एव कारितुम अर्हन्ति। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे का यज्ञ कराते होते, अपना यज्ञ नहीं, दूसरे का यज्ञ जैसे ब्राह्मण लोग करवाते हैं, अगर दूसरे का यज्ञ होता तो तुम्हारे बिना भी वो पार कर देते, लेकिन अपना यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वयं अनुष्ठान किए हैं, तो तुम्हारे बिना उस यज्ञ को पूरा नहीं कर पाएंगे। पारयिष्यन्ति आरब्धम समापयिष्यन्ति, तो यज्ञ पत्नी मानो कहते ननु ते तद अनादराद उपेक्षा एवं, तो कहते हैं कि प्रियतम उन ब्राह्मणों ने आपकी उपेक्षा किया है, आपको प्रसाद नहीं दिया, आपको भोजन नहीं दिया, इसलिए उनकी उपेक्षा ही होनी चाहिए, हमको उनके पास मत भेजिए। तब कहते हैं द्विजात ब्राह्मणा, मद भक्त्या ते अवश्य मान्या, ब्राह्मण है भगवान कहते हैं, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म के आदमी, ब्रह्म के जो व्यक्ति हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म के दो अर्थ मुख्य है, वेद और ब्रह्म भगवान, तो अगर ब्राह्मण शब्द कहा जाता है तो अपने आप ही वो मेरे हो ही गए, ऐसे भगवान कहते हैं। ये टीका में बात लिखी गई, तो मेरे से संबंध मान करके ही उनके पास जाओ, भले वे हमें भोजन नहीं दिए लेकिन वो हमारे हैं। अतएव नृगोपाख्याने स्वयं वो बक्षति, आगे चलकर भगवान जदुवंशियों के बीच में द्वारका में ये प्रवचन करेंगे, जिस कुआं में नृग महाराज गिरगिट बन गए थे, तो नृग महाराज का उद्धार करने के बाद वहां भगवान सभा किए और सभा के बीच में पूछे, जो नृग महाराज बहुत सुंदर देवता के रूप में हो गए, तो उनसे पूछे कि आप कौन हैं और आप किस कारण से गिरगिट बने थे, कृपया आप बता सकते हैं। तो नृग महाराज अपने सुंदर स्वरूप में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जब कभी नाम गिना गया होगा दानियों का, दान देने वालों का, तो मेरा नाम भी जरूर आपके कान में गिरा होगा, मेरा नाम है नृग और मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र। तो सब लोग सुन रहे थे, जदुवंशी सारे बैठे हुए, भगवान के पुत्र भाई सब लोग, और नृग महाराज अपने मुख से बताने लगे कि मैं बहुत बड़ा दानी था इस संसार में। कहते हैं जितने तारे हैं तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने कितने गायों का दान किया है इसको गिनना कठिन होगा, इतना दानी था मैं, बहुत गाय दान दिया। लेकिन एक बार मैं एक गाय दिया एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण को गाय दिया तो ब्राह्मण के यहां से गाय भाग करके फिर मूल झुंड में आ गई। तो राजा को क्या पता है कि कौन गाय भाग करके आई है, एक एक को पहचानना कठिन है। तो वे कहे को गाय जब आ करके मेरे झुंड में मिल गई तो मैंने फिर उस गाय को भूल से दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। दूसरे ब्राह्मण को जब गाय दिया तो जब गाय वो ले जा रहा था, ले जाने के लिए तैयार था और मैं दान दे चुका था, तब तक वो पहला गोस्वामी आ गया। वहीं पर भागवत में गोस्वामी शब्द का प्रयोग, गोस्वामी माने गाय का मालिक, गोस्वामी माने इंद्रियों का मालिक कंट्रोलर वो भी होता है, लेकिन वो पहला गोस्वामी जी आ गए, उनकी गाय भाग करके आ गई थी। तो वो कहा कि ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है, और जिसको दे दिया था नृग महाराज ने वो कहता है मेरी गाय है, हमको दान दिया। तो पहला ब्राह्मण लड़ने लगा कि नहीं पहले हमको दिया था, यही हमको गाय दिया था, और हमारी गाय को हमारे धन को फिर दूसरे को देगा। वो कहता तो नहीं हमारी गाय हो सकता है वो गाय बहुत अच्छी रही होगी स्पेशल, इसलिए दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे, हमारी गाय है हमारी गाय। तो महाराज नृग कहते हैं इस गाय के बदले 1000 गाय ले लो। दोनों को समझा रहे थे ये छोड़ दो, या एक को कह रहे थे कि आप एक लेने दीजिए उसको, आपको और गाय दे देता हूं, कई गाय हजारों गाय। तो दोनों लड़ने लगे, नहीं मैं यही गाय लूंगा, मैं यही गाय लूंगा, दोनों झगड़ा कर रहे थे। और बाद में राजा के व्यवहार से रंज होकर के दोनों उस गाय को छोड़कर चले गए। जीवन में इतनी ही भूल हुई थी नृग महाराज से। तो जब इनके लिए विमान आया, इनको बुलाया गया जमराज जी के यहां। जमराज जी के यहां कोई भी व्यक्ति सवारी से नहीं बुलाया जाता है, लेकिन नृग महाराज एक स्पेशल महान पुरुष थे, इनके लिए विमान गया और इनसे पूछा गया, जमराज जी के पास नहीं धर्मराज के पास पूछा गया। उन्होंने पूछा कि महाराज पहले आप पुण्य का फल भोगना चाहते हैं कि पाप का? तो चौंक गए, पाप भी हमसे हुआ है क्या कोई? तो भगवान धर्मराज ने बताया कि हाँ पाप हुआ है आपसे, आप एक बार एक गाय का 2 बार दान कर दिए थे। तो एक बार वो ब्राह्मण की संपत्ति हो चुकी थी, फिर भी उसको लेकर के दूसरे को दिए और वो भी छोड़ गया, दोनों छोड़ गए तो आप ब्राह्मण की संपत्ति रख लिए, तो ये पाप लगा है। बाकी तो आपके जीवन में पुण्य की कोई सीमा नहीं है, पुण्य ही पुण्य है, एक पाप रह गया। तो महाराज नृग बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तो पहले पाप का फल भुगा दीजिए, इसके बाद पुण्य। अच्छा आदमी यही चाहेगा कि पहले पाप का फल खत्म हो जाए भोग लें, और बुद्धू आदमी सोचता है कि पहले पुण्य भोग लें बाद में दुख देखेंगे जो भी हो। तो इनको दंड दिया गया। दंड क्या दिया, वास्तव में कोई पाप नहीं था, इनको गिरगिट का शरीर दिया गया, लेकिन कहां? द्वारका में। देखिए भगवान के धाम में जन्म हुआ इनका, और एक कुआं में, एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें उनको जन्म दिया गया। तो एक बार जदुवंशी लड़के सब खेल रहे थे, खेलते खेलते वे कुआं के पास गए तो किसी ने देखा अद्भुत गिरगिट इसमें है और फंसा हुआ है, इस छोर से उस छोर कुआं में फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता था। तो लोग उसे निकालने का प्रयास करने लगे। बहुत वे सब जादवों के बहुत सभ्य लड़के थे, दयालु, कोई भी ढेला नहीं मारा ऊपर से। वो सब महात्मा थे, भगवान के ही पुत्र थे और भी जादवों के पुत्र थे। तो उन लोगों ने जा करके भगवान कृष्ण से ही कह दिया, ये कहा कि प्रभु एक ऐसा गिरगिट है जो निकल नहीं रहा है और अद्भुत लगता है कि कोई महान व्यक्ति दुर्गति में पड़ा हुआ है, ऐसा गिरगिट हम लोग देखे नहीं। तो भगवान आए तमाशा देखने के लिए बाहर से कि चले 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 देखें कैसा है कैसा है। तो भगवान अपना हाथ बढ़ाए, अपना कर कमल ऐसे बढ़ाए, सबके देखते थे बढ़ा करके, और उसको निकाल दिए कुएं से बाहर। तो भगवान के श्री हस्त का स्पर्श होते ही वो देवता के रूप में हो गए, भगवान के हाथ का ऐसा चमत्कार हो गया। तब भगवान ने मीटिंग किया। तो वहां पर मीटिंग में भगवान ने बताए सबको कि विप्रम कृता गस्मपि नैव दुर्द्रुह्यत मामका, हे मेरे लोगों, हे मेरे स्वजनों, द्वारकावासियों, अगर ब्राह्मण अपराध भी करे फिर भी उससे द्रोह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं सताना चाहिए। घनंतम बहुसपंतम वा नमस्कृत नित्यस, अगर वो कभी मार भी दे घनंतम तमाचा से अचा से कभी मार भी दिया या गाली दे रहा है, साप भी दे रहा है, तो नमस्कृत नित्यस उसे प्रणाम ही करना। तो उसमें वो लगे बताने, सुना ना इनके मुख से, जब चले गए नृग महाराज स्वर्ग, तब भगवान ने कहा देखा ना ब्राह्मण की संपत्ति लेने पर क्या हुआ, इस संसार में हलाहल जहर जहर नहीं है, असली जहर है ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का धन असली जहर है। ये प्राकृत जहर जो है ये खाने पर तो जो खाता है वो मरता है, लेकिन ब्राह्मण का धन ऐसा है कि वो पूरा वंश ही खत्म कर देता है। तो इस विष को खाए तो अकेले मरेगा, और ब्राह्मण का धन खाया तो पूरा वंश दुखी होता है। इसलिए और भगवान ने कहा सब तरह से, चारों तरफ से देखना कि ब्राह्मण का एक नया पैसा भी हमारे कोष में न आवे। भगवान ने ही सबको सावधान किया, उसका पैसा हमारे कोष में नहीं आना चाहिए। लेकिन उस समय जब भगवान बोल रहे थे, उस समय ब्राह्मण का मतलब होता था उच्चतम कोटि का विरक्त व्यक्ति। उस समय के ब्राह्मण किसी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहते थे, वो वेद पढ़ते थे, वो कोई मंत्री नहीं थे उसमें, कोई भी मंत्री थे मतलब राजा को सलाह देने वाले, लेकिन राजा कोई नहीं थे, तपस्या के धनी थे, विरक्ति पूर्वक रहते थे। उस समय ब्राह्मणों का इतिहास बताया जाता है, अभी तो उस समय की बात दूर है, अपने भारत वर्ष में ही चाणक्य पंडित का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो यहाँ पाटलिपुत्र में रहते थे, महाराज चंद्रगुप्त न चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। तो उनसे मिलने के लिए सिकंदर का सेनापति या मंत्री कोई आया पटना में मिलने के लिए उनसे, पाटलिपुत्र में। तो उस समय चाणक्य पंडित जी गंगा स्नान करके आए थे और शाम के समय, और एक दीपक जलाए थे, दीपक जला करके कुछ काम देख रहे थे, वो राज दरबार का काम देख रहे थे, सरकार का काम। तो जब ये मिलने के लिए आए तो उन्होंने वो दीपक बुझा, दूसरा दीपक जला करके ये दीपक बुझा दिया, दोनों दीपक एक ही समान था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहा कि आखिर उस दीपक के प्रकाश में बात होती, काम होता, वैसा ही एक दूसरा दीपक क्यों जला दिए इसको बुझा करके। तो चाणक्य पंडित ने कहा देखिए ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व क्या है, वो कहते हैं उसमें सरकारी कोष का तेल लगता है उस दीपक में। मैं सरकार का काम देख रहा था, तो सरकार का काम देख रहा था तो सरकार का तेल खर्च हो रहा था, और अब मैं आपके साथ व्यक्तिगत प्राइवेट बात कर रहा हूं तो मेरा वेतन का तेल इसमें लगेगा। अरे बाप रे बाप, ये था स्टैंडर्ड ब्राह्मणों का। और अब तो हवाला घोटाला क्या क्या ये शब्द सुनने को मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं ना क्या दुनिया हो गई, कितना पतन हो गया। जहां सरकार का एक पैसा भी नहीं लेता था सरकारी आदमी अपने वेतन से अधिक मेहनत करता था, और सरकार का धन, हाँ तो जैसे ब्राह्मण का धन हलाहल जहर है वैसे सरकार का भी है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो लोग ये सोचते हैं कैसे भी सरकारी पैसा मिल जाए, जैसे लोग जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक हरामी पढ़ाते नहीं है बच्चों को, पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया, लेकिन सरकार वेतन देती रहती है और ये केवल कभी कभी तो कुछ लोग कुर्सी पर जाकर बैठ कर सोते हैं और लड़के जैसे तैसे खेलते रहते हैं। वेतन लेने का दिन आता है तब निश्चित रूप से वेतन ले लेते हैं, अब तो बड़े आराम से उनके खाता में ही सरकार डाल देती, उनके अकाउंट में डाल देती। लेकिन जमराज जी सब शिक्षक पना छुड़ा देंगे, इतनी पिटाई करेंगे तो होश खुल जाएगा उस समय। बच्चों को अपना बेटा समझकर पढ़ाना चाहिए, अपना खास जन्मा हुआ बेटा समझकर पढ़ाना चाहिए, जितनी शक्ति हो जितना टाइम हो उतना देना चाहिए जितना उपयुक्त टाइम है, नहीं तो ये सबका रिकॉर्ड है और सब हिसाब लिया जाएगा। बहुत दुख होता है वास्तव में, भागवत पढ़ने पर पता चलता है श्रीमद् भागवत इन बातों को कह रहा है। तो जिन ब्राह्मणों के विषय में ये कहा जाता है कि उनका धन नहीं लेना चाहिए, वो परम विरक्त ब्राह्मण होते थे। एक बार एक ब्राह्मण की कथा है, वो महात्मा थे महाराष्ट्र में, तो छत्रपति शिवाजी उनसे मिलने के लिए गए। शिवाजी का नाम सभी लोग जानते हैं, जो गए मिलने के लिए तो उनके स्वागत के लिए वे तैयार हुए। तो उसके पहले की घटना है, वो ब्राह्मण अपनी एक छोटी बच्ची थी, नहीं महाराष्ट्र की नहीं, दीधिति ग्रंथ किसने लिखा है, एक ग्रंथ लिखे, हाँ तो ब्राह्मण थे। तो एक बार वो अपनी बच्ची से मांगे कि वो आसन लाओ, तो बच्ची आकर के कहे कि आसन पड़िया खा गई, पाड़ी थी वो आकर के खा गई है। नहीं कुंभन दास नहीं थे, ये दूसरे थे, वो दूसरी घटना हुई होगी। ओ दीधिति ग्रंथ के रचयिता हैं, नाम जानता निश्चय भूल रहा हूं, तो वो बच्ची आकर कहे कि आसन पड़िया खा गई। आसन क्या था, पुआल उल चाहे कुछ का था वो खा गई थी, तो आसन नहीं था। और तिलक करने के लिए वो दर्पण मांगे, दर्पण लाओ तिलक करने के लिए, तो तिलक करने के लिए दर्पण क्या था, एक माटी के बर्तन में पानी था उसी में देख कर तिलक करते थे। तो वह आकर कहती है कि वो पड़िया पी गई दर्पण वो दर्पण पी गई। तो तिलक करने के लिए पानी था बस, वो भी नहीं रहा, वो पी गई थी। कितना बड़ा काम ये लोग किए, कितना त्याग से रहते थे, अग्नि की तरह तेजस्वी ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों के धन को नहीं खाने के लिए कहा गया है, बेचारे के पास स्वयं ही नहीं है और उसमें से उसके जीविका कोई खा ले तो क्यों नहीं वंश परंपरा से ही वो कंगाल होगा, मरेगा वास्तव। तो ऐसे ब्राह्मणों की बात आई है। जो कुछ भी हो भगवान कह रहे हैं द्विज पत्नियों से कि तुम जाओ अपने पतियों के पास। भगवान बड़े प्रेम से उनके पतियों की याद कर रहे हैं कि वे लोग यज्ञ पूरा करेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए तुम उनको जाना चाहिए, तुम जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। वे जान नहीं रही थी, बहुत उदास हो गई, फिर भगवान कह रहे थे। तो ये सुन करके जगपत्नियों ने जो कहा है भगवान से, अद्भुत वाक्य है। ये कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरु स्वनिगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशय निवोढुमति लंघ्य समस्त बंधन। हे विभो, विभु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापक। तो सबसे पहले भगवान को विभु कह रहे, हे विभु आप हमारे हृदय में बाहर और भीतर सब कुछ जानते हैं कि हमारा क्या मनोरथ है, हम क्या करना चाहती हैं, आप सर्वज्ञ हैं। बहिरंतर व्यापक, अतः अस्माकं बाह्याभ्यंतरं च सर्वं त्वमेव वेत्सि इति भाव। हम क्या कहें आपसे, हमारे हृदय में क्या है और हमारे चारों तरफ बाहर क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभो, भवान एवं निरसंसम गदितुम मा अर्हति। आप इस प्रकार की क्रूर और कठोर बात मत कही, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये जानती थी कि साक्षात भगवान, आपको ऐसा निरसंस क्रूर वाक्य नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने ऐसा प्रवचन किए उनको समझाने के लिए, तो वे कहते नहीं, आपको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसा कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, दुनिया तो ऐसे कठोर वचन बोलती ही रहती है, आपके चरणों से विमुख करती ही रहती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो संसार छोड़ करके आपके चरणों की शरण में आया हो उसे तो आपको अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। सत्यम कुरुष्व निगमम, आप अपने निगम को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजामि। मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसको ग्रहण करता हूं। हमारे भाव को आप समझते हैं, सत्यम कुरुष्व निगमम, आप अपने निगम को, प्रतिज्ञा को या वेद वाणी को सत्य कीजिए। वेद में लिखा गया है कि जो एक बार भगवान के धाम में जाता है, श्री कृष्ण को एक बार प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार में नहीं आता है। ये वेद का वचन है और वेद आपका निःश्वास है, अतः आप अपने वचन को सत्य कीजिए। और भगवान को यह भी कह दिया कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान वास्तव में अपने चरण से अगर किसी को दूर करे तो ये तो अधिकार भी नहीं है उनको दूर करने का। एक वक्ता बोल रहे थे कि भगवान को ये राइट है ही नहीं कि अपने चरणों के पास से हटा दे किसी को। तो ये अपने चरणों के पास से जाने के लिए कह रहे हैं। इस पर जगह पत्नियां कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और बहुत निरसंस। निरसंस उसको कहते हैं जो मनुष्य की हत्या करे, अर्थात क्रूर, बहुत कठोर बोल रहे हैं। मैवम विभोर हति भवान गदितुम निरसंस, भवान एवं निरसंसम गदितुम मा अरहति। आप ऐसे कठोर बोलने योग्य नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई दूसरा मूर्ख व्यक्ति ये कहे किसी को कि कृष्ण का चरण छोड़ करके जाओ संसार में, परिवार से प्रेम करो, ये करो, तो वो तो मूर्ख है, अज्ञ है, बोल सकता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सत्यम कुरुष्व निगमम, आप अपने प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए, तव पाद मूलम प्राप्ता, हम आपके चरणों के मूल में आई हैं, चरणों की शरण में आई हैं, चरण मूलम प्राप्ता, जिस किसी सौभाग्य से या आपकी कृपा से हम आपके चरणों के मूल में आई हैं, चरण तल में आई, हम आपकी दासी हैं। वयम तुलसीदाम पदाव श्रेष्ठम केसर निबोध मत लंघ समस्त बंधन, आपको पता है हम कैसे आई हैं यहाँ पर, कितनी बाधा के बाद परिवार के सारे लोग और संबंधी हमें रोक रहे थे, पर हम आई हैं, ब्लात आई हैं और उनकी आज्ञाओं की अवहेलना करके आई है, अति लंघ्य समस्त बंधन, हमने उनकी बातों का उल्लंघन करके ही नहीं, वो हमें पकड़ रहे थे, सब प्रकार से धर्म का भय दे रहे थे और हम सबको छोड़ करके आई हैं और आपके पास आई और आप इस तरह से हमें भेज रहे हैं, यह ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो यदि भगवान मान लीजिए कहे कि हमारी प्रियाएं गोपियां हैं, हम गोपियों के अतिरिक्त तुम्हें कैसे रखेंगे, तब ये कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हम आपके पास आपकी प्रिया बनने के लिए नहीं आई, हम आपकी दासी बनने के लिए आई, हम गोपीजनों की राधा रानी की दासी बन करके रहेंगे और आपके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी की माला हम छूने को मिलेगा या हम उसे अपने केस में बांध करके रखेंगे, यही हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन आप हमें अपने चरणों की शरण में रखिए, हमें मत दूर कीजिए। अच्छा, पदा व सृष्टम तुलसी दाम, तुलसी की माला जब आप लगाएंगे और हम आपकी दासी रहेंगी, आप जब गोपी जनों के साथ कहीं विहार करेंगे रहेंगे और हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, तो आप अपनी उतारी हुई तुलसी की माला अपने चरण से भी फेंक देंगे ऐसे, तो हम उसको केसर निवोढ़ हम उसी माला को, तुलसी की माला को अपने चोटी में धारण करने के लिए आई हैं आपके पास, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी दासी हैं, लेकिन हमें अपने घर पुनः मत भेजिए। इस तरह से यज्ञ पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावशिष्टम केसर निवोढ़ मत लंघ समस्त बंधन, हमें फिर उस जगह पर मत भेजिए। मां शब्दस्य आदव निर्देश, सबसे पहले इस श्लोक में मां शब्द का प्रयोग, मां माने मत, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, तो इसका अर्थ श्रील सनातन गोस्वामी जी करते हैं परम व्यग्रतया निषेधड़ा, परम व्यग्रता से पहले भगवान की बात का निषेध कर रही है, इसलिए ऐसा ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा, तो मत शब्द पहले निकला, एवं ईदृशम, ऐसा वाक्य मत बोलिए कि पतिनाम यज्ञ समापनार्थम यज्ञ स्थानम जात, पतियों के यज्ञ को पूरा करने के लिए यज्ञ स्थान पर जाओ, ऐसा कठोर वचन मत बोलिए। हे विभो बहिरंतर व्यापक अस्माकम बाह्यम आंतरम च सर्वम त्वया विज्ञायत इति भाव व च इति पाठ सुगमयव भवान इति अन्यो वदतु नाम कृपा कोमल चित्तो भवांस्तु न वक्तुम अपि योग्यो भवति इत्यर्थ। दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा बोले लेकिन आप तो कृपा कोमल चित्त हैं, आपके हृदय में तो केवल कृपा रहती है, तो आप इस वचन को बोलने के योग्य नहीं हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जतो नृशंसम, यह बात क्रूर है, नृशंस है, आप भगवान हैं, आप रसायणव चंद्र हैं, आप रस के समुद्र हैं, रस समुद्र के चंद्रमा हैं, जैसे चंद्रमा कभी कठोर किरण नहीं निकालता है, इस तरह से आप कोमल हैं, रस समुद्र हैं, आपको ऐसा नीरस वचन नहीं बोलना चाहिए। नच केवलम एव तव वचसौ नृशंसता, केवल आपके वचन की ही नृशंसता नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वचन कठोर बोल रहे हैं, बल्कि आपके वचन में झूठापन का प्रतिबिंब दिख रहा है, आपके वचन झूठे हो रहे हैं, आपके वचन का मिथ्यात्व भी प्रकट हो रहा है। आपने कहा है कि जो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है वो मेरे पास से नहीं लौटता है, और जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उस भाव से मैं भजता हूं उसको, तो आपकी ये वाणी झूठी भी हो रही है, तो आप अपने वचन की सत्यता के लिए भी हमें मत ठुकराइए। सत्यमिति प्राक भवान इति भक्त्या अनुनयार्थम पश्चात कुरुस्व त्वम इति प्रेमणा इति गेयम्। एक बार भगवान को भवान कह रही हैं इस श्लोक में, और दूसरी बार त्वम तव सत्यम कुरुस्व। भवान शब्द तृतीय अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है और आदर के सूचक, और त्वम शब्द यह सामान्य सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होता है बिना आदर के। तो एक बार भवान कह रही हैं और कुरुस्व जो क्रिया है यह त्वम के लिए प्रयुक्त होता है, एक बार कहती हैं आप और एक बार त्वम कहती हैं, तो यह भगवान को मनाने के लिए, भक्ति से अनुनय के लिए और प्रेम से समझ लेना चाहिए। प्रेम बस ध्यान नहीं रहा कि एक बार आप कह रही हैं एक बार तुम कह रही हैं। तो यद्यपि तासाम स्वीकारेण और मर्यादो लंघनात् वेद सत्यता न सिद्धेत तथापि, तो ये प्रश्न होता है कि क्या भगवान स्वीकार कर लेते यज्ञ पत्नियों को तो क्या यह वेद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता और इस कारण से वेद की सत्यता भी बाधित होती। तो ये कहा जाता है न सब पुनरावर्तत, जो भगवान को एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता इत्यादि बात इसी की याद दिला रहे हैं। तो दो प्रकार के वचन हैं भगवान के, एक तो व्यवहारिक है एक पारमार्थिक है। जो भगवान से संबंधित सर्व देश सर्व काल सबके लिए समान रूप से लागू होता है उसको श्रुति कहते हैं, और स्मृति कहते हैं जो भिन्न भिन्न देश काल और पात्र के लिए व्यवस्था दी जाती है। तो यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह वैश्य है, यह व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य है कि आत्मा भगवान का अंश है, ये परमार्थिक सत्य है, सबके लिए सत्य है। तो एक तरफ भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था दी है और एक तरफ ये कहते हैं कि मैं जीव का परम प्रिय हूं, मेरा भजन करना चाहिए, मेरे पास जो आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आप उस बात को सत्य कीजिए, जहां व्यवहार में और परमार्थ में विवाद हो तो परमार्थ को ही स्थापित किया जाता है, तो आप अपने पारमार्थिक वचन को सत्य कीजिए और हमें फिर संसार में मत भेजिए। स्मृतेश्च भक्तानां विधि निषेधाति तत्वात्, और स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो भक्त आपका होता है उसके लिए विधि निषेध लागू नहीं होता है, विधि निषेध से अतीत होता है। जैसे देवर्ष भूतात् नृणाम पितृणाम न किंकरो नैवम ऋणी चराजन, सम उद्धृत किया जा रहा है। जब आपके भक्तों के लिए भी विधि निषेध नहीं होता है तो आपके लिए क्या हो सकता है। साक्षात भगवान ससंपद्यत एव ननु जुष्माकम गोकुलांतर नयनात गोप्यो सात्मत्वम ज्ञास्यन्ति। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं आप लोगों को गोकुल ले जाता हूं अपने घर तो गोपियां बहुत अमर्श करेंगी, जलन करेंगी, उनमें सापत्न भाव उत्पन्न होगा, तब ये कहती हैं तुलसी इति रसत्वम आसम तुलस्या दाम इति प्रियत्वेन सदा त्वचरणा चरणाब्जयो संलग्नवात् संलग्नत्वात्। तुलसी जी आपके चरणों में हमेशा रहती हैं, आपकी प्रिया हैं। यदि सापत्न्य भाव होता तो तुलसी जी में और लक्ष्मी जी में होता ना सापत्न्य भाव, लक्ष्मी जी चरणों में रहती हैं पर फिर भी तुलसी आपके चरणों से लिपटी रहती है, तो कोई सापत्न्य भाव नहीं है। तुलसी जी एक देवी हैं और लक्ष्मी जी तो देवी हैं ही, लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी सौती या डाह नहीं करती हैं तुलसी जी से, कभी रंज नहीं होती। जबकि चरण भगवान का हाँ ये तुलसी जी के लिए स्थान है, भगवान के चरण में तुलसी अर्पित किया जाता, फिर भी लक्ष्मी जी सौती अड्डा नहीं करती हैं, प्रेम करती हैं तुलसी जी से, और तुलसी जी भी कोई केयर नहीं करते हैं कि अगर लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो दबा में, ऐसा नहीं है कि क्यों हमारा हक ले रही है, मैं चरण सेवा के अधिकारी हूं तो ये क्यों ले रही है। वास्तव में भगवान के चरणों की सेवा देने का अधिकार तुलसी जी को है, सेवा अधिकार दिया कर निज दासी, ये तुलसी जी का अधिकार है। किसी को भगवान की चरण सेवा में इंगेज करने का काम तुलसी जी का है, लेकिन लक्ष्मी जी बिना परमिशन के बिना पूछे वो चरण दबाती रहती भगवान का, तो कोई झगड़ा नहीं है। तो तुलसी दाम कह करके मानो ये द्विज पत्नियां भगवान को इस बात की याद दिला रहे हैं कि नहीं आपके साथ रहने पर गोपीजन कोई हमसे डाह नहीं करेंगे, कोई द्वेष नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो आपके पदा व सृष्टम, हम तो आपकी प्रिया बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कब आपकी दासी बनने के लिए जा रही हैं, तो आपके पदा व सृष्टम, जब आप श्री राधा रानी या ललिता आदि के साथ रहेंगे और उस समय हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तो यदि आप उनसे डरते हैं, गोपियों से डरते हैं, तो हम आपको आकर प्रणाम करेंगे आपके चरणों में, तो आप तुलसी की कोई माला अपने पैर से भी लेकर के हमको फेंक देंगे कि लो प्रसाद से जाओ, यही प्रसाद तुलसी की माला अपने पदा अवशिष्ट, अवशिष्ट का अर्थ उपेक्षा पूर्वक फेंक देना, अपने चरण से अपनी त्यागी हुई माला को चरण से भी फेंक देंगे, हाथ से नहीं चरण से, तम उसी को लेकर के अपने केशों में अपने जूड़ों में गूंथेंगे। और कैसी तुलसी की माला, जिस तुलसी की माला को प्रियाएं धारण करती हैं, आपकी तुलसी माला को वे धारण करती हैं, और वे जब देखेंगे कि ये आई हैं जगपत्नियां, तो वे अपने पैर से मार देंगी आपकी तुलसी माला को। अच्छा है तव पदा व श्रेष्ठ, इसे चरण से ठुकरा देंगे, ले लो जाओ, तो हम बस वही प्रसाद पाकर के अपने को धन्य समझेंगे, हम अपने केशों का श्रृंगार करेंगे, अपने केश में तुलसी लगाएंगे, तुलसी की माला, यही हमको प्रसाद दीजिए। किसी प्रकार से हे प्रभु हे परमेश्वर हमें अपने चरणों की दासी बना दीजिए, बना लीजिए, हमें मत भेजिए उस संसार में, उस घर इत्यादि जगह पर मत भेजिए। और एक बात और भी कातर स्वर से ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अगर हम आपकी आज्ञा मान करके चली भी जाती हैं, अगर आप इसी में प्रसन्न हैं कि हम वहीं जाएं, तो वे हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अब कोई भी नहीं, हमारे जो स्वजन कहे जाते हैं वे हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बुरी तरह से उनकी अवज्ञा करके वहां से प्रस्थान किया है, तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। वे घर के लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सब भ्रष्ट हो गई, ये हो गई, मनमाना आचरण करती है, घूमती है, रुकने पर भी नहीं रुकी, तो जब वे नहीं स्वीकार करेंगे तो गांव के मुखिया और सरपंच और ये सब कहां से स्वीकार करेंगे। वो तो और प्रचार करेंगे कि भ्रष्ट औरतें हैं, निकालो यहां से। तो भगवान बहुत सुंदर वचन कहे हैं, नहीं नहीं, एक बार जो मेरे संपर्क में आ जाता है उसका देवता भी सम्मान करते हैं और कोई भी दोष दृष्टि नहीं करेगा। वास्तव में किसी ने नहीं किया, ये ब्राह्मण भी बदल गए, भगवान के भक्त हो गए बाद में। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग अब कल कहा जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।